खुदावन के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ज़िंदगी के उन तमाम हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं कि मसीही ज़िंदगी में कौन सी बातें हैं जो फ़ायदा की हैं और कौन सी बातें जो बेफ़ायदा हैं। इसलिए बाइबल मुक़दस हमें ज़िंदगी के बहुत से असूलों, तरीक़ाकार और ज़ाबता हयात के बारे में सिखाती है। जैसे हमने कल सीखा था दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 20वीं आयत से कि हम सब क्या हैं, मसीह के एलची हैं। मसीह के एलची होते हुए हम अपनी तरफ से मुकरर नहीं किए जाते बल्कि खुदा की तरफ से मुकरर किए जाते हैं। हमारा जितना भी इंतज़ाम अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होता है। हम अपने भेजने वाले की नुमाइंदगी करते हैं, अपनी नुमाइंदगी नहीं करते। हम अपने भेजने वाले का पैगाम देते हैं, अपना पैगाम नहीं देते। और फिर हमने सीखा था कि एलची जिस शहर जिस मुल्क में भेजा जाता है वह उसका बसिंदा नहीं होता बल्कि किसी और जगह का रहने वाला होता है। जिसमें हम इस ज़मीन पर भेजे गए हैं हम इस ज़मीन के नहीं बल्कि क्या हैं, आसमान के। हम आसमान से एक मकसद को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं और वो क्या है, एलची के तौर पर, सफीर के तौर पर मसीह की नुमाइंदगी करना, मसीह के लिए ज़िंदगी बसर करना। जिसमें हमने देखा था दूसरा करंथी उसका 5 बाप उसकी 15 आयत को, इसलिए वो सब के वास्ते मुआ जो जीते हैं आगे को अपने लिए ना जिए। और पालूस कहता है हमारा जीना खुदावंद के लिए और मरना खुदावन के लिए। अगर हम जीते हैं तो खुदावन के लिए, अगर मरते हैं तो खुदावन। चले मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहला तमोथियस 2 बाप उसकी 1 आयत, पहला तमोथियस 2 बाप उसकी 1 आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मना जाते और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दयानतदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ जिंदगी गुजारें। ये हमारे मनजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दे दिया के मनासब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, मैं इसी गरज से मनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मकरर हुआ हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की रहनुमाई हो, आमीन। इस हिस्सा में खुदा का बंदा पालूस रसूल हमें मसीही ज़िंदगी में उस फ़ायदा की बात पर गौर करवाता है, और इसमें आज हम 1 आयत पर गौर करेंगे कि कौन सी बात है जिससे हमें फ़ायदा रूहानी तौर पर हो सकता है। एलची होते हुए हमें मसीह के लिए ज़िंदगी गुजारनी है, एलची होते हुए हमें अपने भेजने वाले की नुमाइंदगी करनी है, और एलची होते हुए जब किसी मुल्क किसी शहर में एलची को भेजा जाता है तो उसके पास असूल होते हैं कि उसके मुल्क के क्या असूल हैं। हम जो आसमानी वतन के शहरी हैं, जब कोई यीशु पर ईमान ले आता है तो वो आसमानी शहर का क्या हो जाता है, हरैशी हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो हदायत की किताब है वो कौन सी है, किताबे मुकद्दस। किताबे मुकद्दस जिसके वसीला से हम इस दुनिया में रहते हुए हर एक बंदे और बंदी को, अपने आप को ये बात बताएंगे और सिखाएंगे कि उसका तरीकाकार क्या है। सो ईमानदारों को पालूस रसूल 1 आयत में कहता है, पस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मनाजात और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। बाइबल मुकद्दस में हमें जब भी किसी आयत का किसी बाब का मुतालिया करते हैं तो हमें रवैया देखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर पालूस रसूल का कौन सा रवैया है, इस बात से हमें अंदाज़ा लगता है जब हम यूनानी ज़ुबान में देखते हैं तो इसे कहते हैं इम्पेरेटिव मूड, यानी कि ऐसा लहजा, ऐसा रवैया, ऐसी तबीयत जिसमें वो बात कर रहा है। बहुत दफ़ा हम मजाक में बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि मजाक है, बहुत दफ़ा हम गुस्से में बात करते हैं तो हमारे चेहरे से, हमारे बोलने की आवाज़ से समझ आ जाती है कि बंदा या बंदी, बच्चा क्या है, गुस्से में है। और बहुत दफ़ा वाजह हो जाता है, गुस्से में बहुत से लोग गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ। सो उससे वाजह पता चल जाता है कि इंसान किस लहजे में है। सो पालूस का यहाँ पर कौन सा लहजा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ। यहाँ पर हुक्मिया तौर पर, एक हुक्म के तौर पर पालूस का लहजा है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि क्या करना है, नसीहत करता हूँ तुम्हें क्या करना है। जब कोई गलत हो तो उसे क्या की जाती है, नसीहत की जाती है, और जब कोई तरक्की की तरफ बढ़ता हो तो उसे और तरक्की की तरफ ले जाने के लिए क्या की जाती है, नसीहत की जाती है, नसीहत की जाती है। सो पालूस रसूल अपने रूहानी फर्जंद को, जिसका नाम तमोथियस है, पादरी की हैसियत से वो कलीसिया में खिदमत कर रहा है, उसे नसीहत करता है कि मना जाते और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, सब आदमियों के लिए की जाएं। बहुत दफ़ा हम जब दुआ करते हैं हमारी दुआ की हमें खुद भी समझ नहीं आती। पालूस रसूल यहाँ पर खासल खास इस बात पर गौर करवाता है कि मनाजात और दुआएं और इल्तजा और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। मनाजात में बहुत दफ़ा हम अपने मन की मुराद खुदा के हजूर चढ़ाते हैं कि खुदावंद मेरे मन की मनाजात ये है कि मेरी नौकरी लग जाए, खुदावंद खुदा मेरे दिल की ये दुआ है कि मेरे बाप को शफा मिल जाए। इसे हम क्या कहते हैं, मनाजात, कि अपनी अपनी इल्तजाएं, अपनी अपनी मनाजात या गुजारिशें जो हैं वो क्या की जाएं, पेश की जाएं। फिर दुआएं, दुआएं बहुत दफ़ा हम अपने लिए करते हैं लेकिन खास अलखास दूसरे के लिए। हमारी दुआ अगर किसी के लिए कही गई है तो उसे दुरुस्त तरीके से करने की ज़रूरत है, दुरुस्त तरीके से करने की ज़रूरत है। और इल्तजा जिसमें हम ख्वाहिश करते हैं किसके लिए, कि खुदावंद मेरी ये इल्तजा है कि ये अगर तेरी मर्जी है तो पूरा हो। सो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि जो कुछ मांगोगे तुमको मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। कैसा लिखा है, जो कुछ मांगोगे तो मिलेगा। इसलिए पूरी फिक्र और पूरी तवज्जो से सुनने की जरूरत है। मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, जो कुछ मांगोगे तो मिलेगा ऐसा नहीं लिखा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। सो हम जब मांगते हैं तो हमें मांगने में इस बात का क्या करना है, मुआजना करना है कि हम किस तरह मांगते हैं। हमें मांगना भी वाजह तौर पर है और अपना पैगाम जो खुदावन ने दिया है वो भी वाजह तौर पर दूसरों तक लेके जाना है। सो मनाजातें, दुआएं, इल्तजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। ईमानदारों का ये हक है, हम ईमानदारों का ये क्या है, हक, फर्ज, जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हुक्म है। हुक्म या तौर पर पालूस रसूल कहता है कि ये काम करना है, और जिसमें वो आगे बयान करता है बादशाहों के लिए, बड़े मर्तबा वालों के लिए हमें दुआ करनी है, यानी कि मौजूदा हुकूमत के लिए हम दुआ करके तब्दीली का वसीला बन सकते हैं। और ये तब्दीली इससे पहले कि किसी और जगह पर शुरू हो, हमारी ज़िंदगी में शुरू होनी चाहिए। आज सबसे ज़्यादा जो बात देखी जाती है वो क्या है, आप में नहीं, दुनिया में, ईमानदार बहुत दफ़ा दुआ नहीं करते, वो मनाजात दुआएं और इल्तजाएं पेश नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशें कि मेरी ख्वाहिश है जी मुझे ये मिल जाए खुदा, मुझे ये मिल जाए। और अगर वो ख्वाहिश खुदा के ऐन मुताबक नहीं होती तो खुदा उसका जवाब नहीं देता। और ईमानदार क्या कहते हैं, मैं आगे से दुआ नहीं करूँगा, मैं आगे से ये नहीं करूँगा, मैं खुदा की हजूरी में नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी, मेरी दुआ का जवाब नहीं मिला। सो इसलिए खुदावन खुदा अपने कलाम में क्या करता है, हमें हुक्म देता है दुआएं, इल्तजाएं, मनाजातें और शुक्रगुजारियां, इन सब हालतों को हमें जानने की ज़रूरत है कि जब अपनी मनाजात पेश करें तो वो वाज़ह तौर पर होनी चाहिए, जब किसी की मनाजात है तो वो वाज़ह तौर पर होनी चाहिए। दुआएं दुआएं जब की जाएं तो खुदावंद मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये मर्ज़ी तेरी पूरी हो, ये ज़िंदगी में काम हो। तो इसलिए हम ईमानदारों को बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है, बादशाहों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, चाहे बादशाह कैसा भी हो, बादशाह कैसा भी हो, आपकी दुआ से उसकी तब्दीली हो सकती है। और इस बात की गवाही हमें पुराने अहदनामा में उस नौजवान नबी की जिंदगी में नजर आती है जो कैद करके बाबल में ले गए। याद होगा वो कहानी, दानियल नबी, दानियल नबी जिसने नबुवत की, इसीलिए उसे नबी कहते हैं क्योंकि वो नबुवत की रूह रखता था और उसने नबुवती कलाम किया। उसने क्या किया, अपने दौर के नबूकदनज़र बादशाह की तब्दीली और क्या हुआ, भाली का वसीला ठहरा। किस लिए, पालूस दिन में कितनी दफा दुआ, अब दानियल कितनी दफा दुआ करता था, 3 दफा, सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम, अपने घर के उस दरीचे से यानी कि खिड़की से देखते हुए यरूशलम की तरफ चेहरा करके खुदा के हजूर दुआ करता था कि खुदावंद इस बादशाही में तब्दीली आए। और क्या हुआ, तब्दीली आई, दानियल, सदरक और मीसक और अब्दुनजू, सदरक मीसक और अब्दुनजू के वसीला से, और उन्होंने क्या की, दुआ की। आपकी दुआ मेरी दुआ में कुव्वत है, क्यों, क्योंकि हमारी कुव्वत खुदा की तरफ से आती है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद आसमान से कान झुकाता है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने बाप के साथ क्या करनी है, बात करनी है, बहुत सोच समझ के कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ जो आसमानी है, जो मेरी तरफ अपने कान लगाए हुए हैं, ना कि ये नहीं जल्दी 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 बात की और खुदा कहता है कि मेरे बेटे मेरी सुन और हम उसकी सुनते नहीं। बाइबल मुकद्दस में हमें दुआओं के लिए कहा गया है, पहला तिमोथियस 2 बाप उसकी 2 आयत में बादशाहों के लिए कहा गया है, और पहला तिमोथियस 2 बाप ही उसकी 2 आयत में तमाम आला मर्तबा वालों के लिए यानी कि तमाम इख्तियार वालों के लिए दुआ का कहा गया है, और फिर दूसरा करंथियों 1 बाप उसकी 11 आयत में तमाम खादमों के लिए, तमाम खिदमत करने वालों के लिए दुआ का कहा गया है, और फिर हमें चर्च के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है जबूर 122 में कि वहाँ पर कलीसिया और सहून जिसे कहते हैं उसके लिए दुआ करें। दुआ बहुत बड़ा हथियार है जिसे आज बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। यरू की दीवार जिस पर एक वक्त में 2 रथ 3 रथ दौड़ सकते थे, जिसके ऊपर लोगों की रहने की जगह घर बने हुए थे, राखव फाशा कहाँ पर रहती थी, यरू की दीवार पर, हमारी दीवार नहीं, 9 की या 13 की, इतनी बड़ी इतनी मोटी दीवार के लोगों के उस दीवार के ऊपर क्या थे, घर थे, शहर बसा हुआ था। और वो दीवार कैसे टूटी, दुआ से। खुदावन ने कहा कि इसके गिर्द चक्कर लगाओ और नरसिंगा फूका गया और आसमान से खुदा का जलाल जाहर हुआ। क्या जब वो चक्कर लगा रहे थे, कह रहे थे कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या खुदा कुछ करेगा, क्या खुदा इतना काबिल है, क्या खुदा ऐसा करेगा? नहीं, वो अपने दिल में उस यहोवा की कुदरत को याद रखते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे और वो दीवार गिर गई। आज हमारी जिंदगी में कैसी भी दीवार हो, वो कैसी भी यरू की दीवार हो, वो कैसा भी बहरे कुलजम हो, वो कैसी भी चट्टान हो जिसके सामने मूसा को खुदा ने कहा कि खड़ा हो, और जब मैं कहूं तो मेरे कहे के मुताबिक उस पर आशा को मारना। बहुत दफा हम मूसा की तरह इसमें हम सीख सकते हैं कि खुदा की सुनते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं, खुदा की सही तरह नहीं सुनते, और जब नहीं सही सुनते तो फिर हमारी जिंदगी में उसका नतीजा क्या निकलता है? गलत अमल। उसका जब सही अमल नहीं होता तो हमें जवाब नहीं मिलता, जैसे मूसा ने गुस्से में आकर अपनी मर्जी से वक्त से पहले ही आशा मारा और पानी नहीं निकला। लेकिन जब उसने इंतजार किया तो बहरे कुलजम। बहुत दफा बच्चों से सवाल किया जाता है, कौन सी जमीन है जिसने पहली दफा आसमान देखा था? बहरे कुलजम। दुनिया का बहुत बड़ा दरिया जिसे खुदा ने दो ताही कर दिया और अपने लोगों को बीच में से लेकर गुजर गया। दुआ, दुआ हमें खुदा के नज़दीक ले जाती है, दुआ हमें यकीन करना सिखाती है, दुआ हमारा हौसला बढ़ाती है, दुआ ही है जो जुए तोड़ती है। पालूस और सलास बैठे हुए अपनी मुसीबत पर कह रहे थे, हाय 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 हाय, असी मर गए, असी मर गए, असी मर गए, क्यों असी यसूली गवाही देती? कैसा लिखा है? नहीं, इमाल 16 बाप उसकी 31वीं आयत से पीछे जब हम पढ़ते हैं, 28वीं आयत से 31वीं आयत तक, वहां पर लिखा है कि वो कैद खाना में जंजीरों से जकड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं? प्रस्तुति कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदावंद की हम्द कर रहे हैं। और क्या हुआ? जंजला आया, जंजीरें टूट गई और खुदा ने उनको रहाई दी, लेकिन वो भागे नहीं। पालूस का एतकाद किस पर रहा? खुदा पर, के वो उसे रहाई दे सकता है। और उन्होंने क्या किया? उस पहरेदार को जिंदगी का पैगाम दिया और वो नजात पा गया, वो निजात पा गया। आपकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरत है कि उस दुआ में हम अपने ईमान को मजबूत रखें। हमारी दुआ बहुत दफा उस बीज के छट्टे की मानद होती है कि हम खुदा के खेत में लगाते हैं, कुछ अच्छी जमीन पर गिरता है, कुछ रूढ़ी पर गिरता है, और कुछ पथरीली जमीन में, और कुछ झाड़ियों में। और जो अच्छी जमीन पर गिरता है वो फल लाता है। इसे हम यही एक मिसाली तौर पर देख सकते हैं कि जो दुआ हम खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक करते हैं, खुदा उसका जवाब देता है। अगर मैं कही जाऊं, खुदावंद खुदा मुझे 3 पहियों वाला मोटरसाइकिल दे दे, 3 पहियों वाला मोटरसाइकिल दे दे, और मैं चलाना ना जानता हूं, तो उसका दुआ का, दरख्वास्त का, उस ख्वाहिश का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें सोच समझकर मांगने की जरूरत है। और हुक्म क्या है? याद रखें एक साथ एक राज की बात, अगर आप अपनी दुआओं को देखना चाहते हैं जवाब आने में, ये मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया है, अपनी तकरीबन 15 साल की खिदमत में ये आजमाया है। अपने लिए दुआ करना छोड़कर दूसरों के लिए करना शुरू कर दें, अपने लिए दुआ करना छोड़कर दूसरों के लिए शुरू कर दें। पालूस रसूल जहां कहीं भी वो नजर आता है दुआ करता हुआ, नए अहदनामा की 12 या 13 किताबों, 13-14 किताबों का जो मुसन्नफ है, खतों का मुसन्नफ है, वो अपने लिए दुआ किस लिए कहता है? मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं पैगाम दे सकूं, मेरे लिए दुआ करो कि खुदावन मेरे लिए दरवाज़ा खोले, मेरे लिए दुआ करो कि मैं मसीह की खुशखबरी को फैला सकूं, मेरे लिए दुआ करो कि मैं इस सफ़र को कर सकूं, मेरे लिए दुआ करो कि मैं खुदावन खुदा को और उसके नाम को दूसरों तक पहुंचा सकूं। ये पालूस रसूल की सारी हयाती की दुआएं हमें नज़र बाइबल मुकद्दस में आती हैं। तो आज आप अपनी जो किताब लिख रहे हैं उस किताब में देखें कि किसके लिए है। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। राज की बात, अगर आप अपनी दुआओं को देखना चाहते हैं कि जवाब आए, अपने लिए छोड़कर दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें। अपनी मनाजात की बजाय किसी दूसरे के लिए मनाजात करें। अपनी दुआ के लिए किसी दूसरे के लिए दुआ करें। मौजजात के लिए दुआ करें, हिकमत के लिए दुआ करें, रहमत के लिए दुआ करें, बरकत के लिए दुआ करें। खुदावंद आपकी दुआ का जवाब यूं देगा। और आप सोचते होंगे कि मेरा क्या? खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो सितारे, कितने सितारे हैं? करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, हम गिन नहीं सकते। खुदा उन तमाम सितारों को जो आसमान पर चमकते हैं, हर एक का हिसाब रखता है। जो उनमें से एक गिरता है उसका भी हिसाब रखता है। आसमान की चिड़ियों की फिक्र करता है तो वो हमारी फिक्र क्यों नहीं करेगा? आज राज की बात है, बहुत कम लोग बताएंगे। अपने लिए दुआ छोड़कर दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें, फिर आपकी रूहानी जिंदगी को देखें, पालूस जैसी होगी। मैं इस बीन को बजाने की बजाय तू तू यहोवा मैनू जानदा, मेरा हाल पहचानदा है, मेरा उठना मेरा बैठना सब तो तू वाकिफ है। एक वक्त आएगा कि हमें दुआ करने की जरूरत है अपने लिए। खुदावंद मेरा ईमान कमजोर है, मेरी मददगार, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद मेरा हौसला बड़ा कि मैं तेरा पैगाम दूँ, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद खुदा मुझे तेरी हिकमत की जरूरत है, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद खुदा मैं अपने घर को, खानदान को चलाने वाला बनूं, मुझे हिकमत और दनाई दे। खुदावंद खुदा मैं एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनूं, मुझे कुव्वत और ताकत दे। खुदावंद वो ही मोहब्बत दे जो तूने अपने मुखालफों से रखी और उनको जिन्होंने लान तान किया। ऐसी दुआएं, ऐसी दुआएं खुद गर्जी की दुआएं नहीं बल्कि जरूरतमंदी की दुआएं हैं। अब ऐसा करना शुरू करेंगे तो वो वादा पूरा होगा। मत्ती की अंजील उसका छठा बाप गालबन उसकी 33वीं आयत में, पांचवा बाप या छठा बाप है, आए मेरे साथ देखें। इससे पहले कि मैं गलती करूं, आप तक ये हवाला पहुंचाना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में ये बात आई है, जब किसी मुसन्नफ को नहीं पता तो वहां पर इब्रानियों के खत में लिखा है कि कहीं पर लिखा है। हैरान ना हो जाए कि पादरी साहब को हवाला याद नहीं। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि कहीं जगह पर लिखा है। मत्ती की इंजील उसका गालबन छठा बाप है। छठा बाप उसकी 33वीं आयत, छठा बाप उसकी 33वीं आयत। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। वो चीजें जिसके लिए दुनिया दरबारों पर, कब्रों पर, बाबों पर नंबर लेने के लिए हर जगह पर भागी फिरती है। याद रखें, इस फरेब में ना रहें कि जी इन सबको खुदा ने बनाया है। इन सबको खुदा ने बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया कि उनके पास जाएं। हम सबको जब बादशाह जानता है तो हम उसके दरबारी के पास जाकर क्यों कहें कि मैं बादशाह से बात कर सकता हूं? क्या मैं यीशु मसीह बादशाह से बात कर सकता हूं? क्या मैं यीशु मसीह को मिल सकता हूं? हमें बादशाह से डायरेक्ट बात करने की कुव्वत और ताकत दी गई है। क्या लिखा है? यीशु मसीह के वसीला से तुमको खुदा के पास जाने की क्या है? पहुंच हासिल है। इफिसियों 2 बाप उसकी 18 आयत में यह लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से रूहुल कुद्दस की कुदरत से हम खुदा के तख्त के सामने हाजिर होते हैं। जब हमारे घुटने, जब हम बैठकर, जब हम खड़े होकर, जब हम कहीं भी जगह होकर कहते हैं, ए बाप मैं तेरे हजूर आया हूं, आई हूं, मेरी दुआ सुन। तो सबसे पहले उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करें। और इस रास्तबाजी और बादशाही में यही बात पाई जाती है कि उसकी मर्जी पूरी हो। खुदावंद तू क्या चाहता है? अपने पड़ोसी के लिए दुआ। खुदावंद क्यों चाहता है? अपने मुल्क के लिए दुआ, मुल्क की बहाली। इस राज को अपनी जिंदगी में आज अपना कर देखें और फिर आकर जरूर गवाही दें कि खुदावन ने किस तरह आपकी जिंदगी में अजीब काम किया है।